ब्रह्मा बाबा के समय के साक्षात्कार के द्वारा जो बनवाए हुए चार चित्र हैं, उनमें से मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ये चित्र 30x40 इंच के बनवाए गए थे और इन चित्रों में समझाने के लिए लिखित भी दी हुई है, लेकिन चित्रों में जो चित्रण है उस चित्रण को मुरलियों से टैली करने के बाद और मुरलियों का अध्ययन करने के बाद जो सार निकलता है वो ही एडवांस एनालिसिस के रूप में निकला। मुरली में बाबा ने बोला हुआ था, कई बार डायरेक्शन दिए हैं बच्चे की और लक्ष्मी नारायण आदि चित्रों के सामने बैठ गए, अमृत वेले विचार सागर मंथन करो, तो बहुत नई नई पॉइंट्स निकले। तो प्राइमरी नॉलेज के बतौर तो त्रिमूर्ति की चित्र में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। हालांकि ये क्रम समझाने का भी रंग है, क्योंकि मुरली में बोला है ऐसे है नहीं, ये क्रम नहीं है। क्रम है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। क्योंकि जिस क्रम से तीनों मूर्तियों के कर्तव्य होते हैं उसी क्रम से समझाना चाहिए। तो पहले प्रत्यक्ष होने वाली मूर्ति है ब्रह्मा, नाम ही है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। तो बच्चों के सामने तो पहले माँ ही प्रत्यक्ष होगी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोद के बच्चे होते हैं, वो तो पहले माँ को ही सब कुछ समझते हैं। माँ से जितना उनका प्यार है उतना और कोई से नहीं होता है। वो समझते हैं सारी प्राप्ति हमको माँ से ही होनी है और होती है बचपन में। तो ब्रह्मा जो पहली मूर्ति है उसके द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को जन्म मिलता है। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों का जन्म होता है, लेकिन माँ द्वारा जन्म होता है, लेकिन जन्मदाता कोई दूसरा होता है। ब्राह्मण भी क्या कारण है, आत्मा तो निराकार होती है, लेकिन शरीर में प्रवेश करने के बाद साकार बनती है। तो जब ब्राह्मण साकार है तो साकार के माता पिता भी साकार ही होने चाहिए। इसलिए बाबा ने मुरली में ये प्रश्न दिया है कि उन ब्राह्मणों से जाकर के पूछो कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है। तो ब्राह्मण कह देंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदन है, वो दुनिया भी ब्राह्मणों की ही बात नहीं है। हम ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको यही पता नहीं है कि ब्राह्मणों की सृष्टि रची जा रही है तो ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। मात पिता के बगैर ब्राह्मणों की सृष्टि हो नहीं सकती। तो बाबा ने बोला है, इन ब्राह्मण के लिए भी बोला, दादा लेखराज के लिए भी, कि अगर ये ब्रह्मा चला जावे, ये बीमार पड़ जावे या शरीर छूट जावे, तो जिस तन का भी आधार लेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा जरूर चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ही ब्रह्मा शक्ति की स्थापना होती है, वरना ब्राह्मणों की स्थापना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो पहली मूर्ति है त्रिमूर्ति स्मृति ब्रह्म जो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, उन्हें बच्चा बुद्धि कहा जाता है, तो वो माँ को ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो बालिक बच्चे समझ जाते हैं कि माँ से हमको वर्षा नहीं मिलना, वर्षा तो जन्मदाता जो माँ को भी रचने वाला है उसी से मिलता है। माँ को स्वीकार करने वाला बाप होता है। स्वीकार करना माना रचना। तो पहली मूर्ति बच्चों के सामने ब्रह्मा की आती है। लेकिन मुरलियों में ये बताया हुआ है कि ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं होती है, जन्म मिलता है, प्यार तो मिलता है, लेकिन ईश्वरीय वर्षे की प्राप्ति ब्रह्मा से नहीं होती। ब्रह्मा द्वारा तो होती है लेकिन ब्रह्मा देने वाला नहीं है प्राप्ति। वर्षे का देने वाला पाप होता है। तो वाणियों में ये कई बार बोला हुआ है कि ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा पाप। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ही पहली मूर्ति नहीं है, क्योंकि बाबा हमेशा समझाते हैं मुरलियों में तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए, शिव जयंती कहना रांग है लेकिन त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती का मतलब ही है शिव की तीन मूर्तियां। तो भक्ति मार्ग में बहुत से भक्तों को हुए, तो क्या ये मान लिया गया कि उनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया? नहीं, तो ब्रह्मा को साक्षात्कार तो हुए लेकिन परमात्मा शिव ने उस समय उनमें प्रवेश नहीं किया। यही कारण है कि मुनियों ने आता है कि ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए, नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आता था। बाबा वाराणसी में गए, वहां दीवारों का चित्र बनाते रहते थे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो जरूर उनकी जो बात बुद्धि में उन साक्षात्कारों की बैठी वो किसी के द्वारा समझाई गई, इसलिए अव्यक्त वाणी ने बोला हुआ है। सर साकार रस को कहां से पकड़ा? बंगाल से, कलकत्ते में बाबा की दुकान थी, धीरे जवाहरा थी, सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए थे घर में। लौकिक गुरु से पूछा, उसने आरंभ गीता बताई, उसने बताया नहीं कुछ, क्योंकि उसकी नाली से परे बात थी। तो बाबा जब अपने भागीदार जो कि लौकिक संसार का लौकिक दुकान का भागीदार था उसके पास थे, अलग को मिला अल्लाह, दे को मिली बात चाहिए। दूसरा वाक्य क्या बोला? अलग को मिला अल्लाह बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। तो इसको क्लैरिफिकेशन करने में थोड़ी भूल हो जाती है। भागीदार सिर्फ कलकत्ते वाला व्यक्तित्व ही नहीं था, लेकिन उसका भागीदार कौन? ब्रह्म। दादा लेखराज उसका भागीदार और वो दादा लेखराज का भागीदार, भागीदार तो दोनों ही हुए। तो अलग को मिला अल्लाह, माने अल्लाह ने जिसमें पहले प्रवेश किया उसको मिला अल्लाह, और बे को मिली बादशाही। अलग खड़ा हुआ डंडा होता है उसको कहते हैं अलग, और बे पड़ा हुआ डंडा होता है उसको कहते हैं बे बादशाही। मतलब क्या हुआ कि पुरुषार्थ में आदि से लेकर के आदि में भी जो खड़ा रहता और अंत में भी खड़ा रहता वो होता है अलग। तो परमात्मा शिव ने उस रथ को जो पूरी बंगाल से पकड़ा था वो अलग साबित होता है। उसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों को क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? कि ये जो विष्णु का साक्षात्कार होता है इसका मतलब है कि अब विष्णु की नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग स्थापन होने वाला है। विनाश का जो साक्षात्कार होता है इसका मतलब है अब पुरानी दुनिया गई की गई। और जो सफेद पोष का साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, इसका मतलब है कि अब साक्षात्कार करने वाले को अर्थात दादा लेखराज को ब्रह्मा का पाठ बजाना। अब चूंकि साक्षात्कार तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा को ही हुए थे, क्लैरिफिकेशन देने वाले व्यक्ति को तो साक्षात्कार हुए नहीं थे, तो ब्रह्मा बाबा को पक्का निश्चय बैठ गए। जो पढ़ाने वाला पंडित था वो तो पंडित ही बन के रह गया, और जो पढ़ने वाली बुढ़िया थी ब्रह्मा अर्थात बड़ी अम्मा, वो बुढ़िया पार उतर गई। वो कथा आती है, मुरली मिल बाबा बताते हैं कि बुढ़िया पार चली गई और पंडित जी राम का नाम उसको बताते रह गए, खुद नहीं पार हो पाए, खुद बूढ़ गए। तो क्या हुआ कि यज्ञ के आदमी प्रजापिता के थ्रू अर्थात राम वाली आत्मा के थ्रू परमात्मा शिव ने प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया और ब्रह्मा बाबा स्थिर हो गए, उनकी भावना बैठ गई। माँ भावनावादी होती है, दिल बड़ा होता है माँ का, और बाप बुद्धिवादी होता है, बुद्धि बड़ी बाप की और भावना बड़ी श्रद्धा विश्वास भावना, ये भारत माताओं की गाई जाती है। तो यज्ञ के आदि में ही परमपिता परमात्मा शिव ने राम वाली आत्मा में प्रवेश करके राम बाप का पार्ट बजाया, इसलिए कहा कि राम बाप को कहा जाता है। ये नहीं कहा मुरली में कभी कि राम कृष्ण को कहा जाता है या राम कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, नहीं, राम बाप को कहा जाता है। तो वो राम बाप यज्ञ के आदि में उसका काम था बीजारोपण करना, ज्ञान का बीज बोने का। बीज तो बहुत सूक्ष्म होता है, बीज बड़ा नहीं होता, जैसे बड़ का वृक्ष बीज कितना छोटा, बनियन ट्री बीज बहुत छोटा और उसका वृक्ष बहुत बहुत बड़ा। तो ऐसे ही ये ज्ञान का बीज डालने का निमित्त वो बाप बन गया।
तो जो निमित्त बना, बनाने वाला तो सुप्रीम सोल, लेकिन जो निमित्त बना वो सारी प्रजा का पिता साबित हो जाता है। ज्यादा कार्य नहीं है उसका, आदि सिर्फ बीजारोपण करने का कार्य, वो कार्य संपन्न है। बाकी सारा कार्य, पेट में बच्चा तो आ गया, बीज बोने वाले ने तो बस बीज बो दिया, अब बच्चे को जन्म देना, बच्चे की लालना पालना करना, उसका सारा वजन उठाना, ये किसको करना? माँ को करना। बेसिक नॉलेज देना, ये भी माँ का काम होता है। माँ पहली पहली टीचर होती बच्चे के लिए। तो ब्रह्मा के द्वारा, यानी ब्रह्मा को निमित्त बना करके परमात्मा शिव ने बड़ी माँ का पार्ट बखूबी निभाया। जो गायन है, त्वमेव माता, त्वमेव यानी तू ही है माता, तो वो माता का पार्ट, जन्म देने दाता का पार्ट, जन्म देने का पार्ट, प्यार देने का पार्ट ब्रह्मा बाबा ने बखूबी निभाया। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के समय का ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। हर एक को ये अनुभूति होती थी बाबा से कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया इतना दुनिया में किसी ने नहीं दिया। तो पत्थर माल भी बाबा से मिलने आए तो वो भी अनुभूति करके जाता था कि बाबा ने हमको बहुत प्यार दिया। एक बार की अनुभूति, एक बार की दृष्टि और सदाकाल के लिए स्थायी हो जाती थी, स्थायी छाप छोड़ जाती थी। तो ये निश्चित है कि परमात्मा से ज्यादा माता और पिता का पार्ट अच्छा कौन बजाएगा। तो कृष्ण की सोल के द्वारा परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के रूप में माँ का पार्ट। अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ तो फिर भी रचना है, ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती। ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए फिर भी स्कूल में भेजना पड़ता है, कॉलेज में भेजना पड़ता है। तो वही यज्ञ के आगे वाला बाप जिसके लिए मुरलियों में बोला हुआ है कि राम फेल हो गया, यज्ञ के आदमी जो था वो कोई कारण या कारण ऐसा बना, ऐसा कोई घटना चक्र यज्ञ में बना कि वो आत्मा ने यज्ञ की जिम्मेवारी छोड़ दी। वैसे भी भारतीय परंपरा में पुरुष जो होता है वो घर रात छोड़ के भले चला जाए, अपनी जिम्मेवारी को, बाल बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेवारी को भले छोड़ दे, लेकिन माँ नहीं छोड़ती। तो ब्रह्मा बाबा के पास जो बच्चे कराची में पहुंच गए, बाबा ने उन बच्चों की पालना की, उनका लालन पालन पूरा किया। ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी बारात कितने दिनों तक हम इनको खिलाएंगे। तो श्रद्धा विश्वास भावना जैसे बच्चों के प्रति माँ की होती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा की रही, क्योंकि उसमें तो सुप्रीम सोल पार्ट बजा रही थी। लेकिन बाद में माँ ने शरीर छोड़ा, क्योंकि बच्चों ने माँ के लव का नाजायज फायदा उठाया। ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा हो गई जिन्होंने माँ के प्यार को वैल्यू नहीं दी। उससे क्या हुआ कि माँ का दिल टूट गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हुआ। तो जब ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हो गया तो परमात्मा शिव को
निश्चित है कि कोई कठोर स्वभाव वाला तन धारण करना पड़े, क्योंकि जो काम प्यार से नहीं होता है वो काम मार से जरूर संभव हो जाता है, डंडे से भूत भाग जाती है। तो ऐसे ही हुआ, यज्ञ की आदि वाली जो राम वाली आत्मा थी, जो यज्ञ छोड़ करके चली गई, अपनी जिम्मेवारी को छोड़ दिया, बुढ़िया को तो रास्ता बता दिया राम का नाम लेकर के पार हो जाओ, लेकिन खुद नहीं पार कर सके, परिवार की जिम्मेवारी नहीं उठाई। तो वही आत्मा जो यज्ञ के आदमी छोड़ के चली गई थी, जिसके लिए मुरलियों में बोला है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, दिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर बारमा लाने आ गए। कौन समझते थे? ब्रह्मा और सरस्वती समझते थे कि ये बहुत अच्छे नंबर माला में आवेंगे। वो बच्चे भी गुम हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बोला है कि जो बच्चे एक बार ब्राह्मण जन्म लेकर के ब्राह्मण बनते हैं, अगर शरीर छोड़ते हैं तो वो जन्म लेकर के दोबारा फिर आकर के ब्राह्मण बने, जावेंगे कहां? वो पूर्व जन्म की प्रारब्ध उनको अगले जन्म में फिर से मिलती है। ब्राह्मण जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो जो आदि में बच्चे थे, शरीर छोड़ गए, राम या राम जैसी जो भी आत्माएं थी शरीर छोड़ करके गई, वही आत्माएं फिर दोबारा कहीं न कहीं इस संसार में जन्म लेती हैं और बड़ी होकर समझदार होकर के फिर ज्ञान में आ जाती। रंगमंच तो शूटिंग पीरियड में भी खाली तो नहीं रहेगा। ब्रह्मा और सरस्वती जो माता पिता के रूप में पार्ट बजा रहे थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा से वह हमेशा के लिए वानप्रस्थ हो गया। नहीं, परमात्मा शिव तो ऊपर से एक बार नीचे अवतरित हो गया तो स्वर्ग स्थापन करके ही वापस हम बच्चों को ले करके जाएगा। जो बाबा का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को साथ ले करके जाऊंगा, तो बीच में कैसे चला जाएगा? तो ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका स्थान लेने वाली आत्मा यज्ञ में उनके शरीर छोड़ते ही उसी वर्ष ज्ञान में आ जाती। और वो आत्माएं जो ज्ञान में आती हैं, तो जरूर पूर्व जन्म की प्रारब्ध अपने साथ लाती है। उनमें राम की आत्मा की जो विशेषता है वो बाबा ने बताई कि राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण मिल गया, तीर कमान मिल गया। ये क्या बात हुई? तीर कमान मिल गया, ये कोई वर्षा है क्या? तीर कहा जाता है ज्ञान रत्नों के, ज्ञान के तीर, ज्ञान के बाण जो बुद्ध रूपी तरकस में भरे जाते हैं। और धनुष कहा जाता है ये शरीर जिससे पुरुषार्थ में लचीलापन आता है। जैसे धनुष खींचा जाता है तो लपक जाता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में जो लचीलापन है उतना ही पुरुषार्थ तेज होगा, तेज रफ्तार वाला होगा। तो पूर्व जन्म की जो आत्माएं हैं यज्ञ छोड़ करके गई, अगले जन्म में जब वो दोबारा आकर के ब्राह्मण बनती है तो उनकी ये दो विशेषताएं होती है। वो ज्ञान में ज्ञान बाण चलाने में तीखी होती है और पुरुषार्थ करने में तीखी होती है। तो ये तीर कमान उनको आत्म पूर्वनैतिक पूर्व जन्म से मिलता है। जैसे कोई बड़ा बच्चा बाप से अलग अलग हो जाता है तो बाप उसको उसके हिस्से की थोड़ी प्रॉपर्टी दे देता है। छोटे छोटे बच्चे तो जब बड़े होंगे तब उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन बड़ा बच्चा पहले ही अलग हो गया तो कुछ जो भी दिया उससे वो अपना धंधा अगर शुरू कर दे और सही तरीके से चले तो छोटों से तो ज्यादा ही आगे चला जाएगा। क्योंकि भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि जो वर्षा है, जो राजाई है, घर का कारोबार है, वो बड़े बच्चे को हमेशा सौंपा जाता रहा। तो परमात्मा शिव ने भी भले उस बच्चे ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा वहन नहीं किया, फिर भी उसको हिस्सा उसका निकाल करके दे दिया कि जाओ बच्चे तीर कमान लो और अपने शिकार करो और कमाओ खाओ। तो वो आत्माएं राम और राम जैसी सशक्त आत्माएं जो यज्ञ के आदि में बिछुड़ गई थी वो दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में आती हैं, लेकिन यज्ञ के भंडारे से उनको कोई सहयोग पुरुषार्थ करने के लिए अंदरूनी सहयोग नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? जो एकलव्य का गायन है, किसका गायन? एकलव्य, एक को लव करने वाला, किसी का आधार नहीं, जो एक से प्राप्ति हुई उसी के आधार पर चलने वाला। तो इस तरह की जो आत्माएं भंग है यज्ञ कुंड से उनको कोई सहयोग विशेष नहीं मिले तो भी उनको कोई परवाह नहीं है। वो स्वयं ही इतनी पुरुषार्थी होती है कि बाबा के वारसदार स्वतः ही बना लेती है, अपने पैरों खड़े होकर के बाबा के ढेर वारसदार तैयार करते। इसका गायन शास्त्रों में है दो मुट्ठी चावल, चावल अर्थात वो आत्माएं जिनका देह अभिमान रूपी छिलका उतार दिया जाता है, वो दो मुट्ठी चावल राइट हैंड में एक मुट्ठी और लेफ्ट हैंड में एक मुट्ठी, मन रुद्रमाला के मन के और विजयमाला के मन के, ये दो मुट्ठी चावल, चावल माने आत्मा। ये टीका लगाते हैं तो यहाँ पर चावल रखते हैं आत्मा की यादगार, सात्य को आत्मा, दोनों प्रकार के संगठन को परमात्मा के कार्य में अर्पण कर दें। तो इस तरह की आत्मा इतनी सशक्त आत्माएं हैं कि वो माला का संगठन बनाने की योग्यता रखती है, वारसदार निकालने की योग्यता रखती है, प्रजा बनाने का कार्य उनका नहीं है। श्रेष्ठ आत्माएं जरूर श्रेष्ठ कार्य करेंगे। तो इसलिए मुरली में बोला हुआ है, क्या बोला है? बोला हुआ है कि जो बाद में आएंगे वो सीखे जाएंगे, लास्ट सो फास्ट, और फास्ट पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट आएंगे। अब इसका अर्थ जो है उन ब्राह्मणों की दुनिया में उल्टा लगा लिया जाता है, ऐसे ही मुंह पहुंचने के लिए मक्खनवादी नहीं जिज्ञासुओं की करने के लिए कहा जाता है कि भाई आप तो लास्ट में आए हैं, आपको तो सब बना बनाया मिल रहा है, आप ही फास्ट जा सकते हैं। अरे अब यहाँ तो लाखों करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं, क्या सारे ही फास्ट जा करके फर्स्ट 108 के माले में आ जाएंगे? ये कैसे संभव हो सकता? लेकिन लास्ट सो फास्ट ये भी समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? क्या लास्ट सो फास्ट इतने सारे आ जाएंगे? नहीं, जो यज्ञ के आदमी थे फर्स्ट में थे फिर शरीर छोड़ करके दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आते हैं लास्ट में, वो फिर फर्स्ट पुरुषार्थ करने वाले आगे आगे जाते हैं। क्यों भाई? पुराने जो यज्ञ के हैं वो फास्ट नहीं जाएंगे,
लास्ट वाले जो नए नए आए वो फास्ट चले जाएंगे, जो मम्मा वाला भी शरीर छोड़ने के बाद ये गिने आए। ये कैसे संभव हो सकता है, जिन्होंने मम्मा वाला का चेहरा भी नहीं देखा, जिन्होंने कोई चरित्र भी नहीं देखा। तो उसका कारण है, जिन्होंने साकार को देखा, साकार का प्यार लिया, गोद की अनुभूति ली, वो उस प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनको साकार ही याद आता है, उनको बिंदु याद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने साकार से पालन किया। उनको निराकार ऑटोमेटिक याद आता है, ज्योति बिंदु ऑटोमेटिक याद आता है। तो जब ऑटोमेटिक उनको ज्योति बिंदु याद आता है तो उनको उसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं, उनका सहज राज्य हुआ। इसलिए वो पुरुषार्थ में लास्ट में आने पर भी फास्ट जाते। तो ऐसी आत्माएं मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बड़ी तीव्र गति से पुरुषार्थ, उनमें मुख्य है राम दिया, उसी में परमात्मा शिव का प्रवेश गुप्त रूप से रहता है। वो वाणी में आने का पार्ट उस समय आत्मा नहीं बजाती, इसलिए उस समय अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बोला था 69 जो अव्यक्त वाणियां चली उन्हें बाबा ने बोला कि बाप वानप्रस्थी हो गया, वानप्रस्थी हो गया माने वाणी से परे चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो परम धाम चला गया, है तो इसी सृष्टि पर, लेकिन गुप्त रूप में वाणी से परे होकर के मनन चिंतन मंथन का पार्ट चल रहा है। वो भी पार्ट कब तक, जब तक कि वो मंथन पूरा न हो जाए। किसी बात को समझने में और उसका निष्कर्ष निकालने में, निर्णय लेने में टाइम तो लगता है। तो यज्ञ के आदि में जो आदि ब्रह्मा का पार्ट हुआ, ब्रह्मा तो दो हो गए, एक तो प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा सिर्फ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा है जिसके थ्रू बीजारोपण ज्ञान का किया गया था, परमात्मा शिव ने पहले उसमें प्रवेश किया। तो सन 36-37 में प्रवेश था, राम वाली आत्मा राम बाप यानी प्रजापिता में साबित होती है, ब्रह्मा में प्रवेशता साबित नहीं होती। अगर ब्रह्मा में सन 36-37 में ज्यादा लोकराज में शिव बाबा ने प्रवेश किया होता तो सन 76 में यानी 76 में ज्यादा लोकराज की एज 100 ईयर पूरी होनी चाहिए। ब्रह्मा की आयु कितनी, 100 ईयर, लेकिन ब्रह्मा अभी भी गुंडर दादी के तन के द्वारा पाठ बजाता रहा। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा की आयु 76 में पूरी नहीं हुई, 100 ईयर। वो तो आदि ब्रह्मा था, प्रजापिता ब्रह्मा, वो उस समय 60 ईयर्स ओल्ड का था, 76-7 में 40 ईयर्स ऐड कर दिए तो आता है 76 में वो राम बाप यानी प्रजापिता की सोल दूसरा जन्म लेकर के जब आती है तो वो एज जो है वो यहाँ ऐड हो जाती है और उसके 100 ईयर्स पूरे हो जाते। अब कोई कहे कि वो तो बीच में यज्ञ में रहा ही नहीं, जैसे कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, कोई प्रिंसिपल छुट्टी ले जाता है किसी कारण या कारण, तो उसके स्थान पर कार्यवाहक प्रिंसिपल रखा जाता है। इसी तरीके से प्रजापिता चला गया तो प्रजापिता का कार्यभार किसी ने तो संभाला, किसने संभाला, ब्रह्मा ने संभाला।
तो ब्रह्मा को टाइटल मिल गया प्रजापिता, ये उनका ओरिजिनल टाइटल नहीं है। जैसे पांडे जी की पत्नी क्या कही जाती है, श्रीमती पांडे जी। डॉक्टर साहब की पत्नी क्या कही जाती है, डॉक्टरनी। लकब मिल जाता है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा को लकब मिल गया क्या, प्रजापिता। ये लकब मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा ने उनको दी मुरलियों। इससे पहले की जो मुरलियां हैं उनमें प्रजापिता की बात नहीं उठाई गई। क्यों नहीं उठाई गई, क्योंकि मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने से पहले प्रजापिता की बात उठाने का मतलब यह है कि पुनः आत्माओं को डिक्लेयर कर देना। लेकिन उस समय तो वो आत्माएं यज्ञ में होती ही नहीं है। जब वो आत्माएं यज्ञ में आ जाती है, उनमें से कोई एक यज्ञ में आ जाए राम सीता वाली आत्माओं में से, तो उस समय प्रजापिता का टाइटल ब्रह्मा का डिक्लेयर किया। तो आप देखेंगे कि जो भी पुराने चित्र हैं त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का, उन चित्रों में और इन चित्रों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा है, ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय। तो ये भी रंग हो जाता है। क्यों रंग हो जाता है, कोई बच्चा कहे कि मैं माँ का बच्चा, अब उससे कोई पूछे कि भाई तुम माँ के बच्चा हो, आखिर तुम्हारा कोई बाप तो होगा ना। अब वो बच्चा कहे कि नहीं नहीं मैं तो माँ का ही बच्चा हूँ, तो उससे क्या साबित होता है, दुनिया क्या समझती है, दुनिया अच्छा नहीं समझती। दुनिया समझती है कि माँ ने कोई गंदा कर्म, गंदा कर्म किया है, काला कर्म जिससे इसकी पैदाइश हुई है, ये रंगी पुत्र है। इसलिए बाबा ने ये टाइटल विशेष दिया कि ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय लिखना रंग है, तुम इसको सुधारो, बच्चा बुद्धि हो इसलिए तुम कहते हो कि हम ब्रह्मा की औलाद है, नहीं प्रजापिता ब्रह्मा। हम माँ बाप दोनों की संतान है, सिर्फ माँ की संतान नहीं है। तो उस समय से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय लिखा जाने, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने फिर भी अपने नाम से आगे प्रजापिता लिखना शुरू नहीं, क्योंकि अब वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी समझ में बात थी फिर भी नहीं है। वो फिर भी आज तक भी कह रहे हैं कि हम अम्मा पुत्र हैं, ये नहीं लिखते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, यानी बीवी के नहीं लिखे। बाबा ने 66 के बाद, यानी मम्मा की शरीर 66 के बाद, मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद 65 के बाद ये प्रजापिता शब्द ऐड कर दिया। इसका मतलब है कि ये प्रजापिता टाइटल ब्रह्मा का क्या टाइटल था, ब्रह्मा कोई ओरिजिनल पार्टधारी प्रजापिता का नहीं था। और प्रजापिता का जो ओरिजिनल टाइटल धारी था वो तो यज्ञ के आदि का व्यक्ति थे, वो पर्सनैलिटी कौन सी थी, यज्ञ के आदि में जो पर्सनैलिटी जिसने बीजारोपण का कार्य किया, जिसका के यज्ञ में पुरानी पुरानी बहने नाम भी लेती थी प्यू प्यू की वाणी, अब उन्होंने वो नाम लेना बंद कर। जैसे भक्ति मार्ग में बाप को गुम कर दिया और बच्चे को प्रत्यक्ष कर दिया, बाप का नाम गुम, कृष्ण बच्चे का नाम प्रत्यक्ष कर दिया, कृष्ण भगवान हो गया। ऐसे ही यज्ञ में भी हुआ, जो वास्तव में यज्ञ पिता था उसको गुम कर दिया, और जो बच्चा बुद्धि था उसको प्रत्यक्ष कर दिया। तो वही यज्ञ के आदि वाला व्यक्तित्व जो प्रजापिता का टाइटलधारी असली व्यक्ति था, असली प्रजापिता था, टाइटलधारी क्यों प्रजापिता था, वही व्यक्तित्व वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब यज्ञ में आती है तो वो ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बनता है। क्या ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बनती है? मुख वंशावली, वो प्रजापिता आदि में भी मुख वंशावली था, ये वंडरफुल बात। प्रजापिता कैसे कहते मुख वंशावली? हम बच्चे तो मुख वंशावली ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन जो ये किसी आदि में था वो कैसे मुख वंशावली? मुझे भूला है कि मुख वंशावली न हो तो वो प्रजापिता कैसे होगी? ऐसे हुआ कि ब्रह्मा को जब साक्षात्कार हुए तो ब्रह्मा ने अपने मुख से उन साक्षात्कारों को उसके सामने सुनाया, और उसने सुना। तो सुना किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से सुना, और ब्रह्मा के मुख से सुना, और उसमें परमात्मा ने प्रवेश करके उसकी बुद्धि में उसका अर्थ क्रिया कर लिया, तो वो भी ब्रह्मा कुमार हुआ। क्या ब्रह्मा कुमार? प्रजापिता भी, ये किसी आदमी भी, वही आत्मा फिर दोबारा जन्म लेकर के आती है तो जरूर श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार होगी, क्योंकि वो तो हुआ चोटी का ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन से प्रसिद्ध है? ब्राह्मण चोटी, चोटी माने सबसे ऊंची स्थिति का ब्राह्मण। तो वही आत्मा जब दोबारा यज्ञ में आती है तो चोटी का पुरुषार्थ कैसे? शिखर, चोटी, चोटी का ब्राह्मण तो है चोटी का, लेकिन उसको प्रजापिता नहीं पहने। क्या ये गलती हो जाती है अक्सर हम बच्चों की कि हम शंकर को ही प्रजापिता समझ लेते हैं? क्या वो ब्राह्मण चोटी तो है, चोटी का ब्राह्मण तो है, ऊंची स्टेज का ब्राह्मण तो है, लेकिन प्रजापिता नहीं कहा जाता? प्रजापिता तो जो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व था, आत्मा तो वही, लेकिन पर्सनालिटी वो आदि वाली वही प्रजापिता, क्योंकि उसके द्वारा काम हुआ था बीजारोपण का पिता का। जब काम ही यहाँ नहीं हुआ पिता का तो तब तक प्रजापिता का आएगा? प्रजापिता कब कहा जाए? जब काम करके दिखाए। पिता का काम क्या? आदि में काम है बीजारोपण का, बीज बोने का, और अंत में काम है वर्षा देने का। बाप बच्चों को वर्षा देता है। तो जैसे दुनिया वाले गुरु लोग कह देते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य, सारा जगत उनको गुरु मानता नहीं है, भारतवासी लोग भी सब नहीं मानते, तो भी जगत गुरु का टाइटल तो झूठा टाइटल हुआ ना। तो ऐसे ही वही प्रजापिता वाली सोल ब्राह्मण बन करके दूसरे जन्म में, जब तक 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को बात का साक्षात्कार न करा दे तब तक वो प्रजापिता नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला हुआ है कि प्रजा कितनी है? 500 करोड़। तो 500 करोड़ सारी प्रजा का पिता होना चाहिए। प्रजापिता अलग थी और ब्रह्मा अलग। यज्ञ में गलती से दोनों को मिलाकर के एक व्यक्ति को समझ लिया, ये भूल हो गई। जैसे लौकिक संसार में माँ अलग होती है, बाप अलग होता है, ऐसे ही हमारी ब्राह्मणों के परिवार में भी माँ अलग है और बाप अलग। बाप का पाठ बजाने वाली राम वाली आत्मा वो अलग, और कृष्ण के रूप में मृदुल पाठ बजाने वाली, मीठा पाठ बजाने वाली माँ अलग। कैसे अंतर करें? तो मुझे में बताया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना करता हूँ, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देता हूँ। तो काम दोनों अलग अलग हो गए। वर्षा देने का काम पहले होगा या ब्राह्मणों की रचने का काम पहले होगा? पहले रचना होगी। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना हुई है, लेकिन उनको विश्व की बादशाही का कोई वर्षा नहीं मिल गया। वर्षा तो तब मिले जब राजधानी स्थापन हो जाए। अभी राजधानी स्थापन हुई कहाँ है? धर्म सत्ता राज सत्ता एक के हाथ में आई कहाँ है? एक भाषा एक राज्य एक धर्म की स्थापना हुई कहाँ है? समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो ये जो स्थापना हो तब वो प्रजापिता साबित। दूसरा वाक्य बोला है मुरली में कि प्रजापिता कभी सूक्ष्म बदलवाती नहीं हो सकता। प्रजापिता तो जरूर प्रजा के साथ होना चाहिए। सूक्ष्म बदल में थोड़ी संज्ञा रखी जाती है। तो वो समझ लेते हैं कि पहले प्रजापिता था जब साकार में था, अब वो सूक्ष्म बदलवासी हो गए। तो प्रजापिता नहीं है और सूक्ष्म बदलवासी अव्यक्त ब्रह्म है। तो कोई कुछ समझते हैं कोई कुछ समझते हैं, लेकिन मुरलियों के अनुसार वास्तव में प्रजापिता सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी ऊपर नहीं जा सकता। ऑलराउंड पार्ट कृष्ण की सोल का ऑलराउंड पार्ट नहीं है। कृष्ण और क्राइस्ट की बाबा राशि मिलाते क्रिश्चियन से न ज्यादा तत्व प्रधान बनते हैं न ज्यादा नमो प्रधान बनते हैं, वो तो आते ही बाद में। तो ऐसे ही कृष्ण की सोल न ज्यादा तमो प्रधान बनती है और न ज्यादा तत्व प्रधान बनती है। सीढ़ी के अंदर जो उत्थान और पतन की पूरी कहानी दिखाई गई है ऑलराउंड कहानी 5000 वर्ष की, वो कोई कृष्ण की कहानी नहीं है। वो तो पूरे 84 जन्म लेने वाले व्यक्तित्व की कहानी जो संगम इसमें पाठ बजाता है अंत तक, जब तक इस सृष्टि की 500 करोड़ भी आत्मा भी नीचे से ऊपर न पहुंचे। सबको साथ लेकर के जाने का पार्ट है किसका? बाप। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर आत्माएं जा रही है और चित्र किसका दिखाया गया? संत का। तो उस समय वो प्रजापिता का पार्ट साबित। अब प्रजापिता ब्रह्मा ये दोनों आत्माएं तो अलग अलग साबित हो गई। और भी ढेरों महावाक्य हैं जिनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रजापिता अलग है और ब्रह्मा अलग है। वो तो लॉजिक में दिए हुए हैं, उनको देख सकते हैं। दूसरी बात ये पैदा होती है कि चित्र में जो चित्रण किया गया है तीन मूर्तियों का, उनमें ब्रह्मा को जिस पोज में बैठाया गया वो पोज इस बात को साबित कर रहा है कि उनमें लीनेंसी है, स्वभाव संस्कार है, कठोरता नहीं। और शंकर को जो बैठक दिखाई गई है उससे ये साबित होता है कि उसके स्वभाव संस्कारों में कठोरता, जैसे बाप कठोर होता है और माँ मृदुल होती है, ऐसे यहाँ चित्रों में जो दिखाया गया है पुराने चित्रों में वो बिल्कुल क्लियर दिखाया गया कि ब्रह्मा जो है वो लव फुल स्टेज में है सहज, और शंकर को ऐसे दिखाया गया है जैसे ठिठुर रहा हो छंद में अकड़ के। तो ये अकड़ के जो बैठी हुई बैठक है वो कठोर स्वभाव की सूचक, जैसे ला कानून बहुत कठोर होता है, कानून कभी झुकता नहीं है। तो ऐसे ही ये पक्का अहमदाबादी है, कैसा अहमदाबादी माने अहम माने अहंकार, दा माने देने वाला, अहमदाबादी माने बाद में सबको झुकाने के बाद फिर अपने अहंकार को झुका दे। वैसे अपने अहंकार को किसी के सामने झुकाने वाला नहीं, सारी दुनिया को झुकाने के बाद कर देते हैं। ये पांच चीजें जो बैठक दिखाई गई है एक्यूरेट दिखाई गई। दूसरा चित्र में ब्रह्मा को तो कपड़े पहने दिखाया गया और शंकर जी को तो लंगोट भी नहीं दिखाया गया लगता है। क्यों? फकीरों को भी कपड़े मिल जाते हैं, ऐसे कपड़े नहीं मिले क्या? तो उन कपड़ों की तो बात ही है। हमारा तो भेद का ज्ञान है, कपड़े का मतलब है शरीर रूपी वस्त्र। ब्रह्मा जब तक जीवित रहे इनको अपने शरीर रूपी वस्त्रों का भान रहा, निराकारी स्टेज इनकी नहीं बन सकी। इसका प्रूफ तो प्रूफ है, जितने भी धर्म पिताएं हैं मुख्य मुख्य इस सष्टरूपी रंगमंच की, उनके फोटो को ध्यान से देखिए, चाहे क्राइस्ट हो चाहे बुद्ध हो चाहे गुरु नानक हो, उस चेहरे को देखने मात्र से लगता है कि वो जैसे सृष्टि पर नहीं है, उनकी आंखें उनकी दृष्टि और बत्ती ऊपर लगी हुई, वो चेहरा उनका निराकारी स्टेज बताता है। ऐसी निराकारी स्टेज ब्रह्मा की किसी भी फोटो में नहीं है। तो इसलिए मृत्यु पर्यंत ब्रह्मा साकारी स्टेज वाले हैं। और मुरली में भी बाबा ने बोला है, क्या बोला है? माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार। निराकार का मतलब महीन बुद्धि, माँ उतनी महीन बुद्धि नहीं हो सकती, विशाल बुद्धि नहीं हो सकती। तो शंकर को जो नग्न दिखाया गया है उसका मतलब है कि वो निराकारी स्टेज वाला, बिंदु रूप स्टेज में टिकने वाला। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई बिंदी को ही निराकार कहा जाता है। निराकार का असली अर्थ क्या है वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते। निराकार का अर्थ है निराकारी स्टेज में रहने वाला। जब हम कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, निराकार को याद करो, तो ये समझ लिया जाता है कि बिंदु को याद करो। लेकिन ये तो छोटे स्तर की पढ़ाई थी, जबकि ये बात बताई गई कि बिंदु को याद करो। वो तो एक साधन दिया था स्टेज तक, ऊंची स्टेज तक पहुंचने के लिए, कि बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि महीन बनेगी और महीन बुद्धि परमात्मा को पहचान सकेगी, परमात्मा पार्थ को पहचान सकेगी। अगर बुद्धि मोटी होगी तो परमात्मा के पार्थ को और अपने पार्थ को भी पहचान देगी। तो साधन मिल गया और साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त कर लिया, माना परमात्मा को पहचान लिया, तो फिर बिंदु को याद करना या परमात्मा के असली स्वरूप को याद करना, क्या करना चाहिए? असली स्वरूप को याद करना। तो निराकार का मतलब कोई बिंदु नहीं। बिंदु को याद करने वाले तो होते हैं विदेशी और विधर्मी, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक जी जितने भी विदेशी और विधर्मी हैं वो सब बिंदु को याद करते हैं, वो साकार को नहीं मानते, रामकृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानेंगे, वो निवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं। लेकिन हमारा धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म में शरीर को और आत्मा को दोनों को मान्यता देकर के चलना पड़ेगा। सिर्फ आत्मा को याद करना, बिंदु को याद करना, वो सिर्फ मुक्ति पाएंगे क्या? जीवन मुक्ति नहीं पाए सकते, यानी स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन जो प्रवृत्ति को याद करेंगे, परमात्मा के प्रवृत्ति रूप को, माने आत्मा को भी और आत्मा सुप्रीम सोल जी शरीर के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, राजधानी की स्थापना सुप्रीम सोल करता है, उस स्वरूप को जो याद करेंगे उसी के साथ जीवन मुक्ति को भी पाएंगे। तो शंकर को जो नग्न रूप दिखाया गया है इसका अर्थ किस प्रकार है? दूसरी तरफ चित्र में विष्णु की जो नीचे लिखत दी हुई है हिंदी वाले चित्र में, उसमें दिया हुआ है चार नाम, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। इससे साबित होता है कि जो चार भुजाएं हैं मददगार सहयोगी, वो तो चार भुजाओं का नामांकन नीचे किया गया है, लक्ष्मी नारायण राम सीता, यही विश्व चतुर्भुज का स्वरूप है। लेकिन जो नए चित्र बनाए गए या जो अंग्रेजी के चित्र छपाए गए 30x40 इंच के या गुजराती के छपाए गए, उनमें से राम सीता का नाम उड़ा दिया। बाबा के समय में ही राम सीता का नाम उड़ा दिया। इसका मतलब बाबा की भी बुद्धि में भी ये बात नहीं आई कि विष्णु की चार भुजाओं का अर्थ क्या है। विष्णु के दो रूप आज भी मुरली में आया था, विष्णु के दो रूप हैं, तो दो रूप का उन्होंने क्या अर्थ समझ लिया, एक लक्ष्मी का और एक नारायण का। ये नहीं समझा कि संग विधि लक्ष्मी नारायण और छत्तीस 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन संग युग में होता है, वही विष्णु का रूप है, वही चार आत्मा है सतयुग और त्रेता में नारायण का राज्य और राम राज्य स्थापन करने की निमित्त बनती है। तो विष्णु चतुर्भुज उसमें चार आत्माओं का संकलन, कौन कौन सी चार आत्मा, राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्ति राधा और सीता। तो विष्णु का जो चित्र है वो भी यहाँ अर्थकलित है, अलंकार दिखाए गए हैं ढेर सारे अलंकार, हमको आपको इतना काम धाम पहना दिया जाए तो छोड़ करके भागे, हम उसी का आगे। तो ये जो काम धाम दिखाया गया है ये है सिद्ध गुणों का श्रृंगार, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार। संगम भी लक्ष्मी नारायण के रूप में डिक्लेयर होने वाली आत्माएं हैं वो गुणों से ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगी, इसलिए ये विष्णु का रूप संपन्न रूप दिखाया जाता है, ब्रह्मा का रूप संपन्न रूप नहीं है, शंकर का जो रूप है वो भी संपन्न नहीं है क्योंकि निराकारी स्टेज वाला वो भी अकेला है, गॉड फादर इस वन कहा जाता है तो अकेला हुआ ना, लेकिन जब कंबाइंड होते हैं राम और सीता तो भगवान भगवती के रूप में वो विष्णु का टाइप है। ये विष्णु द्वारा पालना कौन से जन्म से शुरू होगी, 21 जन्मों में से जो पहला जन्म है वहां से ये विष्णु की पालना शुरू होगी। यही संबंधी लक्ष्मी नारायण की बात, कोई सत्यु की लक्ष्मी नारायण की बात नहीं। अब कोई कोई ये कहते हैं कि शंकर का तो पार्ट बाबा ने बताया, बाबा ने तो कहा है शंकर का पार्ट ही नहीं, शंकर क्या करता है कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही चित्र रख दिया है समझाने के लिए। तो क्या जवाब दिया है, चित्र रखा गया है समझाने के लिए, मुरली में बोला है कि शंकर का चित्र अगर न रखे तो त्रिमूर्ति की शोभा नहीं हो, यानी उस नंगा बैठा हुआ है, उस नंगे के बिना त्रिमूर्ति के चित्र की शोभा ही उड़ जाएगी। ये कैसे हो सकता? शोभा तो विष्णु से हो जाएगी। बोला कि इस त्रिमूर्ति में शंकर की जगह शिव को कैसे रखें? शिव तो बिंदु, तो इसलिए शंकर को रखा। तो मतलब क्या है कि चित्र बनाया जाता है चरित्र का चित्रण करने के लिए। शंकर का जो चित्र है वो उसकी निराकारी स्टेज के चरित्र को चित्रण करने के लिए रखा गया है। निराकारी स्टेज में रहकर जो कर्म किए जाते हैं उनका पाप और पुण्य नहीं बनता। जब पाप और पुण्य ही नहीं बनता तो कर्म किया और न किया बराबर हो गया। इसलिए बोला कि शंकर का कोई पार्ट नहीं, क्योंकि पार्ट रंगमंच पर बजाया जाता है। सूक्ष्म वचन या मूल वचन में पार्ट नहीं बजाया जाता, पार्ट साकार सृष्टि पर चलेगा ना। तो शंकर का कोई पार्ट नहीं। वास्तव में उसे तो चित्रों में सिर्फ ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया जाए, मतलब वो आत्मा कोई पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है। कौन पार्ट बजाता है उसके अंदर? शिव की सोल ज्ञान सुनाने का पार्ट बजाती, राजधानी को संगठित करने का पार्ट बजाती है। जो एवर प्योर है, जो सोल, वो यूनिटी बना सकता है। प्योरिटी के बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। राम तो फेल हो गया, जिनके लिए मुरलियों ने कहा था, क्या कहा गया है कि उन बच्चों को संदेशियों के संग में बुलाते थे।
कृष्ण को तो श्याम भी तो सुंदर भी, गोरा भी, कृष्ण काला भी, लेकिन राम को तो चित्रों में कैसे दिखाते हैं? हमेशा काला ही दिखाते हैं, राम को गोरा नहीं दिखाते। ये तो संगम युग की यादगार है कि प्रजापिता का जो पार्ट है वो भी तो मनुष्य ही है, मन क्षिप्र पुरुषार्थी, एक सेकंड में टॉपमोस्ट शिखर पर और एक सेकंड में नीचे। जैसे कोई नाविक होता है, जहाज में ऐसे बहुत से नाविक होते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कहीं जरूरत पड़े तो गिरे हुए को उठा के ऊपर लाएं। तो ऐसे उस आत्मा का ये विशेष पार्ट है, खप से डाउन और खप से ऊंची स्टेज। एक सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु का पार्ट। तो ये राम कृष्ण की आत्माओं का अनुभव है, दूसरी आत्माओं का नंबर वन। ऐसी जो आत्मा है जबकि की आदि ने ही अति पतित होने का पाठ बजाई चुकी थी, उनको अब अति पावन भी बनना है। तो वो रंग वाली आत्मा ये पाठ बजा, कौन सा पाठ? पावन। ये बात चल रही थी कि राम वाली सोल जब राजधानी स्थापन हो जाती है, तब जो सत्य के बीज रूप आत्माएं हैं वो भी एक प्रकार से तीसरी दुनिया कही जाती है। पहली दुनिया तो वो दुनिया जबकि हम ज्ञान में बेसिक नॉलेज भी नहीं ली थी, तो वो थी पहली दुनिया। फिर जब हमने ब्रह्मा कुमारी में बेसिक नॉलेज ली तो हो गई दूसरी दुनिया, और फिर जब एडवांस नॉलेज ली तो ये हो गई तीसरी दुनिया। तो ये तीसरी दुनिया जो है वो 108 बीज रूप आत्माओं की बहुत छोटी दुनिया। इन 108 बीज रूप आत्माओं में सारा संसार, सारे संसार का बीज समाया हुआ। अच्छे से अच्छे पाठधारी और बुरे से बुरे पाठधारी यहाँ समाये। इन बीजों के अंदर सारी दुनिया का दर्शन कर सकते, सारी दुनिया के चरित्रों का अध्ययन कर सकते। तो ये जो तीसरी दुनिया है, इस तीसरी दुनिया के 108 मन के 108 आत्मा संगठित होकर के एक आवाज से अगर उस बाप को मन का वाचा और कर्मा तन से मन से धन से समय और संपर्क से उस बाप को बाप के रूप में स्वीकार कर लेती है तो भी वो प्रजापिता साबित हो जाता दुनिया का प्रजा यानी एडम या आदम। लेकिन वो खुदा नहीं है, सुप्रीम सोल नहीं है, फिर भी वो क्या है? प्रजापिता, यानी प्रजापिता प्रजा का पिता। 500 करोड़ प्रजा है तो प्रजापिता भी होगा। तो प्रजा तो 500 करोड़ पतित है या पावन है? पतित तो प्रजापिता भी पतित पावन नहीं हो सकता। तो ये गलत फहमी हो जाती है। कृष्ण बाबा जी कल में आया तो पावन होना चाहिए। ये तो जो बच्चे बने जिन्होंने इस पाठ को पहचाना ये उनकी दृष्टि के ऊपर है कि वो किससे प्राप्ति करना चाहते हैं। प्रजा पिता से प्राप्ति करना चाहते हैं जो पतित है या उसमें आई हुई सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है उससे प्राप्ति करना चाहते हैं। वो किसको देखते हैं? पतित को देखते हैं या पावन को देखते हैं? पावन को अगर देखेंगे तो उनको वैसा वर्षा प्राप्त हो और अगर पतित को देखेंगे तो वर्षा भी वैसा ही प्राप्त हो। जैसी दृष्टि वैसी तस्वीर। तो प्रजा पिता का पाठ वो वंडरफुल पाठ है जो दुनिया वालों की समझ में जल्दी नहीं आता। लास्ट में दुनिया की 500 करोड़ भी आत्मा शरीर छोड़ करके जब परमधाम जाने को होगी तो उस आत्मा का कार्य पूरा हो जाए। जो कहा जाता है पतित पावन सीताराम, पतित पावन राधा कृष्ण नहीं कहा जाता। पतित को देखते हैं या पावन को देखते हैं? पावन को अगर देखेंगे तो उनको वैसा वर्षा प्राप्त हो और अगर पतित को देखेंगे तो वर्षा भी वैसा ही प्राप्त हो। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। तो प्रजा पिता का पाठ वंडरफुल पाठ है जो दुनिया वालों की समझ में जल्दी नहीं आता। लास्ट में दुनिया की 500 करोड़ भी आत्मा शरीर छोड़ करके जब परमधाम जाने को होगी तो उस आत्मा का कार्य पूरा हो जाए। जो कहा जाता है पतित पावन सीताराम, पतित पावन राधा कृष्ण नहीं कहा जाता, पतित पावन ब्रह्मा सरस्वती नहीं कहा जाता, पतित पावन लक्ष्मी नारायण नहीं कहा जाता। गायन क्या है? पतित पावन सीता। तो जरूर सीता और राम वाली आत्मा वही जाकर के कष्टी के उद्धार का कार्य अंत तक हो। इसलिए पतित पावन सीताराम का गायन राम राज्य का गायन है, कृष्ण राज्य का गायन नहीं है, नारायण राज्य का, ब्रह्मा राज्य का, शिव राज्य का गायन नहीं है। शिव तो विश्व का मालिक बनता ही, विश्व का मालिक जो बनता है वो ही दूसरों को मालिक बना सकता है। तो परमपिता परमात्मा शिव ही उस सतन के द्वारा हम बच्चों को विश्व का मालिक बना। अब सवाल ये रहा जो बात चल रही थी कि शंकर का पाठ, तो शंकर का पाठ तो निश्चित साबित हो जाता है। ये कह सकते हैं कि शंकर का पाठ नहीं है, उसका अर्थ बता दिया कि उसने पाठ बजाने वाली आत्मा तो शिव की है या ब्रह्मा की कौन है? ब्रह्मा की कौन उसमें क्या पाठ बजाती है? जो कैसेट्स में उन्होंने गीत बजाए रखे हैं वो बजाने वाले खुद ही नहीं जानते किसका अर्थ क्या है। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो विनाश की वाणी जो गुंजाएगा मुख से बोलेगा वो कोई तो व्यक्तित्व होगा दादा। लेखराज वाले व्यक्तित्व के द्वारा तो ऐसी कभी भी कोई विनाश की वाणी गूंजी नहीं। लेकिन वही सोल किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके विनाश की वाणी गुंजाती है। क्यों? जिस आत्मा ने इतना मधुर पाठ बजाया, इतना प्यार भरा पाठ बजाया, वो विनाशात्मक वाणी कैसे चलाएगी? क्या लिखा है? मुरली चली ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन मुरली का मुरली तो चली, लेकिन मुरली चलने के बाद ये जो कार्य हुआ वो तो दूध पिला नहीं था हुआ बच्चों को। हाँ, वो तो स्थापना का ही कार्य हुआ, लेकिन बताया है हर आत्मा का पार्ट है स्थापना पालना और विनाश। तो जो स्थापना करेगा वो विनाश भी करेगा। जब तक वो विनाश का कार्य संपन्न न करे तब तक स्वर्ग के गेट में पास नहीं हो सकता। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से हर आत्मा को पता जरूर करना पड़े। सत्य और असत्य के धर्म युद्ध को हर आत्मा को लड़ना जरूर पड़े। मनसा की पावर से लड़े या वाचा की पावर से लड़े वो बात दूसरी। तो ब्रह्मा की सोल उस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके ऐसी ऐसी तीखी बातें सुनाती है जो ब्राह्मणों की दुनिया में असुर घुसे हुए हैं उनको तलख पैदा हो जाती, उनका दिल छटपटाने लगता है, उनको जैसे घाव लगते हैं, क्योंकि सच्ची बात सुनकर के मिर्ची लगती है। तो ऐसी तीखी बातें ब्रह्मा की सोलोत्तम के द्वारा सुनाती है, लेकिन कैसी स्टेज में? निराकारी स्टेज। क्या? निराकारी स्टेज। सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा अभी भी जो गुंजाय दादी के द्वारा कार्य कर रहा है वो विनाशात्मक वाणी नहीं चला सकता। बीज रूप स्टेज वो सशक्त स्टेज है। तो राम वाली आत्मा के सानिध्य में पहुंच करके जैसे कि वो माँ पति के संरक्षण में पहुंच गई, तो विधवा माता होती है तो बच्चों से दबती है, अंदर भी कंट्रोल रहती है बच्चों के, लेकिन माँ जिसका खोया हुआ पति मिल जाए तो वो बच्चों के कंट्रोल में नहीं रह सकती। तो वन पार्ट इस समय ब्रह्मा की सोल का बीज रूप स्टेज में शंकर के अंदर चलता है। शंकर के माथे पर जो चंद्रमा दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में चित्रों में वो इसी समय की यादगार। तो शीतल पाठ बजाने वाली आत्मा शंकर के मस्तक पर धारण की हुई है, यानी सर माथे पर उठाई हुई है। दूसरी आत्माओं के इतना सर माथे पर नहीं उठाया हुआ जितना उस आत्मा को उठाया हुआ। तो मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं, संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाते। 16 कला संपूर्ण नहीं, अधूरा। तो ये विनाशात्मक पार्ट जो है वो ब्रह्मा की सोल ही बजाती। राम वाली आत्मा तो पूर्ण जन्म से ही इतनी तमो प्रधान बन चुकी, इतने काले कर्मों का पाप का बोझा लेकर के आती है यज्ञ में दोबारा जन्म लेकर के, कि वो अगर लगातार याद करने का पुरुषार्थ न करे तो उसके पापों का खात्मा हो नहीं सकता। इसलिए उसका तो सिर्फ एक ही काम है, जिसको पार्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पार्ट कर्मेंद्रियों की हलन चलन को कहा जाता। याद करना कोई कर्मेंद्रियों से नहीं होता, याद करने का पार्ट नहीं कहेंगे, वो तो बुद्धि की बात है। तो बुद्धि से याद करने का कार्य है वो उस आत्मा को करना होता है। इसलिए कहा गया मुरली में कि शंकर का कोई पार्ट नहीं। बाकी ये नहीं कहा कि शंकर नहीं, शंकर तो है। मुरली में बोला हुआ है तुम बच्चे शंकर को मत काटो, शंकर को काटोगे तो तुम भी मुझे जाओ। क्या? क्योंकि शंकर तो है पावरफुल सोल, तुम उसको काटोगे तो वो तुम्हें काट डालेगा। क्या? शंकर का अगर काट किया तो शंकर क्या करेगा? है? शंकर तुमको काट डालेगा, इसलिए शंकर को नहीं काटना। तो शंकर तो है, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई है उनमें शंकर की मूर्तियाँ जितनी जाति तादाद में मिली है, नग्न मूर्तियाँ, नग्न देवता की, उतनी और दूसरी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं मिली। इसलिए साबित होता है कि ये जो मूर्ति है वो तो कभी सारे संसार में माननीय रही है और अभी भी। लिंग रूप जो दिखाया जाता है मंदिरों में, वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि लिंग जो है वो शरीर का वाची है, वाचक। जो सारा शरीर है वो ही लिंग है, और उसमें जो ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल प्रवेश है वो है स्टार, सुप्रीम सोल। इसलिए शिवलिंग पर बिंदी रखी जाती है। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में बीच में हीरा लगाया गया, तो वो हीरा है सुप्रीम सोल, और लिंग है वो शरीरधारी की यादगार। मोस्टली लिंग काला बनाते हैं, लाल भी दिखाते हैं, लाल रंग क्रांति का सूचक है, काला रंग ताम की स्थिति का सूचक है। तो शरीर एक ही है लेकिन उसमें सत्व प्रधान सूर्य की सोल भी कार्य कर रही है, तो रजो प्रधान ब्रह्मा की सोल भी कार्य कर रही है, तो तामसी स्टेज वाली राम वाली आत्मा भी उसी शरीर में बैठी, कभी वो पार्ट बजाती तो कभी वो पार्ट बजाती तो कभी वो पार्ट बजाती। समझने वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, ये क्या चक्कर? तो इसमें चक्कर में पड़ने की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञान को बुद्धि में स्मरण में लाने की बात। वंडरफुल पार्ट, कैसे वंडरफुल? डबल पार्ट, सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल पार्ट। अब रही बात कि जो ये कहते हैं कि अगर शंकर का पार्ट है तो अव्यक्त बाबा दादा ने या मुरलियों में बाबा ने स्पष्ट क्यों नहीं बताया कि जैसे ब्रह्मा का साकार में पार्ट था ऐसे शंकर का भी प्रैक्टिकल में पार्ट होगा? तो उसका स्पष्ट जवाब यह है कि बाबा ने मुरली में ये बोला हुआ है कि जो असली ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों के इशारा ही काफी, ब्राह्मणों की भाषा इशारे की है, सीधा सीधा बता दिया जाए तो फिर परीक्षा किस बात की है? थोड़ी की भी परीक्षा होती है कि नहीं होती? तो ये भी एक परीक्षा है बाप को पहचानने की। ये बाप की पहचान जैसे कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पास किए बगैर याद की यात्रा भी संपन्न नहीं हो सकती, सहज राजयोग नहीं हो सकता है। जिंदगी को तो खींच के याद करना पड़ता है, सहज नहीं तो सहज नहीं होगा तो निरंतर याद भी नहीं होगी, और अगर सहज राजयोग नहीं हुआ निरंतर याद न हुई तो ऊंचा पद नहीं पाएगा। तो ये बात यहाँ साबित हुई कि बाबा ने तो इशारे जरूर मुरलियों में दिए, एक नहीं ढेर इशारे दिए उस पाठ के लिए। अब बच्चे समझे हैं ना समझे उन इशारों को, क्योंकि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद की दुनिया में बुद्धि लगाने वाले बच्चे उन बेहद के अर्थों को नहीं समझ पाते, वो बेहद की बातों का भी हद में ही अर्थ लगाते। बाबा ने कहा कि दुनिया में तुम जो भी चलन चलते हो, जो भी बात बोलते हो, जो भी देखते सुनते हो, उन सब बातों को अलौकिक में परिवर्तन करो। बच्चे नहीं कर पाते, कुछ पुण्यजन्मों का उनका हिसाब किताब ऐसा है। तो बाबा ने तो इशारे दिए हैं मुरली, जैसे मुरली में बाबा ने बोला है एक दिन टेलीविजन भी निकलेगा, सब बच्चे तो देख नहीं सकेंगे, तो बहुत से बच्चे तो ब्रह्मा सरस्वती मनमोहनी दीदी की तरह शरीर ही छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी सूक्ष्म शरीरधारी बन जाएंगे। उनको शरीर धारण ही नहीं करना है अपना चोला, किसी में प्रवेश करके पार्ट में जाएंगे, तो सब बच्चे तो टेलीविजन देख नहीं सकेंगे। देखेंगे टेलीविजन में, देखेंगे बाबा मुरली चला रहे हैं टेलीविजन में, देखेंगे बाबा मुरली चला रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा के समय तक तो टेलीविजन भारत में आया ही था, तो उस समय की तो बात ही नहीं हो सकती।
बाद में ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ दिया तो टेलीविजन में बाबा कैसे मुरली चला रहे गुलजार ना तुम द्वारा गुलजार दादी को कोई बाबा कहा जा सकता है नहीं अगर बाबा कहा जाए तो फिर उनको ब्रह्मा भी कहा जाए फिर तो धोती कुर्ता पहना के बैठा लो लेकिन नहीं परमात्मा का जो पार्ट है वो असली पार्ट जो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है वो मुरलियों में भी ढेर ऐसी महावाक्य हैं जिनसे वो पार्ट साबित होता है अव्यक्तवाणियों में भी ढेर महावाक्य हैं जिनसे वो पार्ट क्लियर हो जाता है जैसे बोला है घबराओ मत बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्ततम द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावे घबराओ मत ये आश्वासन किसको दिया जरूर कोई बच्चे हैं जो घबरा रहे हैं बड़े बड़े महारथियों की ऊपर नीचे की चलन देख करके उनको घबराहट पैदा होती है कैसा स्वर्ग स्थापन होगा तो उनको बाबा ने आश्वासन दिया घबराओ मत बैकबोन बाप दादा जैसे रीढ़ की हड्डी होती है हड्डी तो पीछे होती है और व्यक्ति सामने होता है वो व्यक्ति जो सामने दिखाई पड़ रहा है अगर उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो वो खड़ा रह सकेगा नहीं खड़ा रह सकता इसी तरीके से बाप और दादा बैकबोन के रूप में कार्य कर रहे हैं क्या अभी बैकबोन बाप दादा बैकबोन के रूप में कार्य यानी पीछे से तो शिव की और ब्रह्मा की शक्ति उस ब्राह्मण बच्चे में कार्य कर रही है लेकिन सामने वो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो ना के बराबर क्योंकि साधारण पार साधारण रूप लेकिन उसके पीछे जो बैकबोन है पावरफुल उसको कोई देख नहीं सकता तो बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए सामना किसका किया जाता है दोस्तों का या दुश्मनों का दुश्मनों का सामना तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाप दादा किसका सामना करने की बात कर रहे हैं जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई आस्तीन के सांप बनकर के यज्ञ के अंदर घुसे हुए जो यज्ञ को तहस नहस कर रहे हैं जैसे विश्वामित्र के यज्ञ में दिखाया गया शास्त्रों में कि असुरों ने कचरा डाला यज्ञ विध्वंस की यज्ञ नहीं होने देते राक्षस यज्ञ में घुसे हुए बड़े बड़े बिच्छू टिंडल बड़े बड़े डंक वाले उनका सामना करने के लिए बैकबोन बाप दादा को प्रत्यक्ष होना ये बोला बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्ततम द्वारा जो किताब छापी गई है उसमें व्यक्त शब्द हटा दिया व्यक्त सन की जगह लिख दिया व्यक्ति उस समय की जो छपी हुई अव्यक्तवाणी है वो देखिए उसमें व्यक्त सन है और किताब में छाप दिया व्यक्ति ताकि गोल गोल बात हो जाए क्योंकि व्यक्ति कहेंगे तो गुंजारदारी साबित हो जाएंगी हो सकती है लेकिन व्यक्त सन कहा जाएगा तो गुंजारदारी साबित नहीं होगी क्यों क्योंकि गुंजारदारी तो अव्यक्त हो जाती है सन से वो व्यक्त सन है या अव्यक्त सन वो तो अव्यक्त ब्रह्मा वाला व्यक्त सन थे जब उनमें शिव प्रवेश होता था तो नहीं होते थे वो आत्मा गुप्त तो व्यक्त सन को बदल करके उन्होंने व्यक्ति कर दिया निश्चित रूप से साबित हो जाए विथ प्रूफ बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते तो जिनको ललक होगी वो प्रूफ लेने के भी पीछे पड़े किस बात के प्रूफ लेंगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे किस बात के प्रूफ लेंगे कि 74-75 में बाप कैसे असुरों का सामना कर रहा था यज्ञ के अंदर इस बात के प्रूफ लेंगे
मेहनत के द्वारा ही पाप प्रत्यक्ष होगा, ऐसे प्रत्यक्ष बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। तो यज्ञ के अंदर बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और 74-75 से हो भी रहे हैं, ये बात बोले तो इससे साबित हो गया कि बाप का पार्ट जरूर प्रैक्टिकल साकार रूप में उस समय से ही चल रहा है। ऐसे ही अभ्यवाणी ने एक और बात बोला है बाप साकार से आकारी बनो। कौन? बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बने। तीन बातें, बाप साकार से आकारी बना, इसका अर्थ तथाकथित ब्राह्मण उल्टा कर देते हैं। वो समझ लेते हैं बाप साकार से आकारी बना माना ब्रह्मा साकार था, वो आकारी बन गया। अरे ब्रह्मा बाप था ही कहाँ? ब्रह्मा क्या था? वो तो माँ थी, वो तो कृष्ण बच्चा है, वो राम बाप है ही कहाँ? तो उसकी बात नहीं है, वो बात है ही यज्ञ के आदि वाले व्यक्तित्व की, जो आदि में पर्सनालिटी थी प्रजापिता की, वो बाप साकार था उस समय, साकार संधारी था, साकार से आकारी बना, आकारी बना वो समझ लेते हैं आकारी कोई सूक्ष्म बतन में मर जाने के बाद ऊपर बनता होगा, तो सूक्ष्म बतन में मर जाने के बाद ही आकारी भी बना जाता है, लेकिन साकार शरीर में रहते हुए भी हम आकारी बन सकते हैं। अभ्यवाणी में बाबा ने हमको डायरेक्शंस दिए हैं कि तुम बच्चों को प्रैक्टिस करनी है घड़ी घड़ी, साकारी एक सेकंड में, आकारी एक सेकंड में, निराकारी, साकारी आकारी निराकारी, तीन स्टेज की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो। तो शरीर में रहते हुए ही प्रैक्टिस करनी है या शरीर छोड़ करके मम्मा बाबा भी तेरे प्रैक्टिस करनी है? शरीर में रहते हुए ही ये प्रैक्टिस होनी। तो आकारी का मतलब तो इसी विषम बतन में चला जाना नहीं, शरीर छोड़ना नहीं, शरीर में रहते हुए आकारी कैसे बना जाए वो भी कोई ब्राह्मण बच्चे नहीं जानते। मनन चिंतन और मंथन की जो स्टेज है वो ये आकारी स्टेज, इसमें ये दुनिया साकारी दुनिया भूल जाती है, देह और देह के संबंध भूल जाते हैं, वो फरिश्ते की स्टेज बन जाती है। जिन फरिश्तों का स्पर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता उस समय नहीं रहता, वो है हमारी आकारी स्टेज। तो वो आकारी स्टेज वाली एडवांस पार्टी कोई सूक्ष्म मतन में ऊपर नहीं है, जो उन्होंने समझ लिया है नहीं, वो सूक्ष्म मतन वासी ब्रह्मा भी इसी सृष्टि पर कार्य कर रहा है। 39 में शरीर छोड़ने के बाद में कोई ऊपर नहीं चला गया, जिसको संदेशियां देखती हैं ध्यान में, तो वो सूक्ष्म मतन में कोई भा नहीं है, वो भी यही है। इसलिए मुरलियों ने सूक्ष्म मतन को बाबा ने उड़ा दिया। क्या सूक्ष्म मतन कोई चीज है? ऐसे मुरलियों ने बोला हुआ, सूक्ष्म मतन में क्या है? कुछ भी नहीं, सूक्ष्म मतन है। ऐसे जो महावाक्य बोले हुए हैं इनसे ये साबित होता है कि इसी सृष्टि पर कोई विशेष ब्राह्मण बच्चे हैं जो अपनी ऐसी आकारी स्टेज बना लेते हैं संगठित रूप में, उन्हीं का वो सूक्ष्म। तो बाप साकार था यज्ञ के आदि में, दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आया तो ब्रह्मा की सोल ने उसमें प्रवेश किया और आकारी बन गया, मनन चिंतन मंथन की स्टेज शुरू हुई। जो शास्त्रों में गायन है कि भागीरथ ने तपस्या की, गंगा ऊपर से नीचे तो आई लेकिन दुनिया का उद्धार नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? कि ऊपर से नीचे तो आई लेकिन शंकर की जटाओं में उलझ गई। तो जटाओं में कोई गंगा नहीं उलझती है, वो तो बुद्धि के अंदर ज्ञान घुमरने लगा। बुद्धि के अंदर जो ज्ञान घुमरने लगा है वो ही आकार निश्चय है। तो बाप साकार था, साकार से आकारी बना, कब से? 59 मनन चिंतन मंथन की स्टेज बन गई, दुनिया जैसे भूलने लगी, लौकिक कार्य व्यवहार को भी निश्चित रूप से वो आत्मा अलौकिक कार्य में पलटने वाली बन गई, यानी लौकिक दुनिया के जो कार्य हैं वो भी अलौकिक बनाने वाली वो आत्मा होगी। ये उस बाप के पार्ट की विशेष पहचान हुई।
लेकिन वो पाप का पार्ट नहीं हो सकता। जिसने लौकिक कार्यों को भी अलौकिक कार्य के रूप में परिवर्तन नहीं किया विद प्रूफ, तो पाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी। कब से? जब से उस आत्मा को पक्का निश्चय हो जाए ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो जाए, ब्रह्मा मृत्यु लोक में खड़ा होता है। मुरली में बोला तो जब ब्रह्मा की सोल का मृत्यु लोक पूरा होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? जरूर अमर लोक शुरू होगा। अमर लोक बिना अमरनाथ के तो शुरू हो नहीं सकता। तो अमरनाथ का मतलब ये नहीं है कि वो कोई है जो कोई भी ज्ञान में उसको मार न सके। क्या जैसे ब्राह्मण के लिए कहा जाता है ज्ञान में जब तक चल रहे हैं तो जैसे जीवित है जिंदा, और जब अनिश्चय हो गया तो जैसे मर गए। तो अमरनाथ की स्टेज ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी जन्म मरण की स्टेज में ना आए, वो अमरनाथ का पाल। तो अमरनाथ के बच्चे भी कैसे होंगे? नंबर वाले इसी चीज को धारण करने वाले होंगे कि घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय में आने वाले नहीं होने चाहिए। बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी। निराकारी का मतलब है निसंकल्प, ड्रामा पर अटूट निश्चय हो जाना, अपने पात्र पर अटूट निश्चय हो जाना, जैसे कि भविष्य का स्वरूप सामने खड़ा हुआ, कोई उनको उस निश्चय से उस लक्ष्य से भिगा नहीं सकता। तो निसंकल्प से बीजिंग से वो हो गई निराकारी। तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। कब से साकार बनेगा? तो साकार कब से बनेगा? वो तो कह देते हैं कृष्ण सतयुग में साकार बनेगा। अरे वो तो बाप का पार्ट ही नहीं है, वो साकार बनेगा उसकी बात कहाँ है? शिव की भी बात नहीं हो सकती, शिव तो हमेशा ही निराकार है। तो साकार कब बनेगा? हाँ, जब प्रत्यक्षता होती है संगम की, कृष्ण की पार्ट की, यानी जो सेकेंडरी ब्रह्मा है, प्रत्यक्षता ब्रह्मा नहीं, सेकेंडरी ब्रह्मा। इस सेकेंडरी ब्रह्मा में परमात्मा शिव ने बाद में प्रवेश किया। कब से प्रवेश किया था? ब्रह्मा बाबा में दादा निर्णय जी को व्यक्तित्व में परमात्मा शिव ने कब प्रवेश किया? हाँ, जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय सब सिंध हैदराबाद की बांधेली गोप गोपियां उठ करके कराची में आ गई, और उस समय बाबा ने मुरली चलाना धारा प्रवाह से शुरू कर दी। जब इकट्ठे ही नहीं थे तो किसके सामने मुरली चलाएंगे? कराची में बाबा अकेले गए थे तो वहां अकेले थोड़े बैठ के मुरली चलाई जाएगी। बाद में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जब सारा संगठन वहां इकट्ठा हो गया तो परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश करके मुरली चलाना। खाने वाला भी मौजूद था और लिखने वाला ब्रह्मा था, परमात्मा शिव का उनमें प्रवेश नहीं होता। प्रवेश कब से हुआ? जब से मुरली चलाई। इसलिए मुरली में बोला है कि मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान आया हुआ है? जब ज्ञान सुनाते हैं, इसे कैसे पता चले? जो भगवान ज्ञान सुनाएगा वो तो दुनिया में कोई ज्ञान सुनाई नहीं सकता। तो परमात्मा बाप ने जो मुरली चलाई वो मुरली में ही बता दिया, पति एक में। जब वहां संगठन इकट्ठा हो गया, 47 में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह काम पर होने में कुछ तो टाइम लगा ना। तो पति एक में ब्रह्मा की एज उस समय कितनी होनी चाहिए? दादा लेखराज की एज कितनी होनी चाहिए? 15 है, बाल प्रसवस्था में प्रवेश करता हूँ। तो 48 में 40 है तो और एड कर दीजिए 88, तो 88 पूरा होना और कृष्ण की सोल 100 साल पूरे कर जाते, यानी ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते, मृत्यु लोग उसका समाप्त हो जाता, ब्रह्मा की आय मृत्यु लोक में खलास होगी। ऐसा मुरली में बोला है तो जब 88 में ब्रह्मा सेकेंडरी की भी आयु समाप्त हो गई तो उसका मत्स्योग समाप्त हुआ, फिर वो कहाँ से मिलेगा अमर लोक? यानी वो आत्मा उस बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाए। कब से? 89 से। हाँ 88 से भी, लेकिन 89 की शिवरात्रि जो है वो विशेष कृष्ण की प्रत्यक्षता की रात्रि है, जिसके लिए बोला हुआ है मुरली में कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो जैसे बिजली की कौंध जाती है, जैसे रात के अंधेरे में बिजली कौंधती है तो एक बार तो चारों तरफ रोशनी रोशनी फिर अंधेरा, तो ऐसे ही उस समय कुछ हुआ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, बड़े बड़े महारथियों के दिलो दिमाग के अंदर बिजली सी कौंध गई, नवाती क्या नव अति कृष्ण कोई अकेला थोड़ा ही प्रत्यक्ष होगा है, नव माने नौ, नौ नौ आत्माएं होती नहीं इकट्ठी नवाती में। तो कृष्ण की सोल उसी ब्राह्मण बच्ची के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है साकार में, तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी फिर साकारी। ये महावाक्य उस प्रजापिता वाले व्यक्तित्व के लिए जो दूसरा जन्म लेकर के यदि में आती है उसी के लिए था। तो ऐसे ढेरों महावाक्य हैं अभ्यस्त वाणियों में भी मुरलियों में भी, जिनका अगर संग्रह किया जाए तो वो जो पाठ है शंकर का पाठ या जो नया पाठ है परमात्मा का वो निश्चित रूप से साबित हो जाता है, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता, उनके पास जवाब नहीं है। अब रही बात तो कोई कहे फिर गुलजार दादी में कौन आता है, तो स्पष्ट है कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, शिव बाबा की सोल प्रवेश नहीं करती। जब तक जिस बात का बुद्धि में आरोपण नहीं होगा तब तक उनको नए बात के ऊपर श्रद्धा बैठ नहीं सकती, तो अलग अलग करके समझाना पड़े कि ब्रह्मा में जब प्रवेशता होती थी शिव बाबा की तो ब्रह्मा चैतन्य अवस्था में रहते थे, उनकी सोल गुम नहीं होती थी, और गुलजार दादी की सोल तो गुम हो जाती। इसे साबित होता है उनमें सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य की मनुष्य आत्मा की प्रवेशता होती है, मनुष्य आत्मा को अपना सूक्ष्म शरीर होता है, परमात्मा शिव को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो तो हल्की फुल्की आत्मा है, कब आता है कब चला जाता है पता नहीं पड़ सकता, लेकिन गुलजार दादी में पहले से ही डिक्लेरेशन हो जाता है कब आना है और कब जाना है, परमात्मा की सोल नहीं हो सकती। फिर मुरली में तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि मैं किस में प्रवेश करता हूँ, मैं बड़े से बड़े कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ, तो क्या गुलजार दादी को कामी कांटा कहा जा सकता है? गुलजार दादी तो गृहस्थी की कीचड़ में भी नहीं पली, वो तो आज से ही बचपन से ही यति के शुद्ध वातावरण में पली, मम्मा बाबा के सामने पली, तो उनके लिए ही कैसे कहा जा सकता है कि वो कामी कांटा है? उनमें ब्रह्मा की सोल देवात्मा की सोल तो प्रवेश कर सकती है लेकिन परमात्मा की सोल प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बोला बाप तो फिर कन्या पर सवारी कैसे करेंगे, ये कायदा नहीं, बाप तो बड़े से बड़े काम ही कांटे में प्रवेश करते हैं, उसको बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए कमल फूल पिंक फ्लावर, ये बात क्लियर हो जाती है कि शिव गुलजार दादी में नहीं आती, उनमें सिर्फ ब्रह्मा की सोल आती। उसका प्रूफ सबसे बड़ा यह है कि जो वाणी चलती है वो वाणी धारणा युक्त वाणी है, धारणा के पॉइंट उसमें ज्यादा होंगे, ज्ञान के पॉइंट उसमें उतने नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर की सोल ज्ञान की बातें सुनाएगी और देवात्मा दानावान होती है तो वो तो धारणा की बातें सुनाएगी ना। दूसरी बात, बाबा ने बोला है कि मैं माइक पर थोड़ी पढ़ाई पढ़ाऊंगा, माइक पर प्रश्न कैसे टीचर पूछेगा। तो साबित हो जाता है कि गुलजार दादी में तो जब प्रवेशता होती है तो बहुत बड़ा हुजूर इकट्ठा होता है, माइक पर ही बोला जाता है। तो वो माइक पर बोलने वाला पार्ट जो है वो परमात्मा का पार्ट नहीं हो सकता। बाप तो थोड़े थोड़े ग्रुप्स में थोड़े थोड़े बच्चों से बात करते हैं, बाप कोई बहुत बड़े हुजूम के सामने भाषण करने नहीं जाएगा। बाप तो अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता है, इतनी बड़ी दुनिया की हुजूम के सामने प्रत्यक्ष नहीं, लाखों करोड़ों की पब्लिक में बाप नहीं आता। तो इससे भी साबित हो गया कि गुलजार दादी में शिव परमात्मा की सोल नहीं आती, ब्रह्मा की सोल ही होती। तो वो परमपिता परमात्मा का पार्ट नहीं है जो अंधश्रद्धा बैठी हुई है, परमात्मा का पार्ट तो यज्ञ के अंदर कहीं दूसरी जगह ही बदला। तो पहचानने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। जो गीता पाठी यानी मुरलियों के पढ़ने वाले ब्राह्मण होंगे वो ही उस पाठ को समझ सकेंगे, जिन्हें मुरली से प्यार नहीं होगा वो उस पाठ को भी पहचान। एक है सामान्य नॉलेज त्रिमूर्ति में शंकर की मूर्ति की। बाबा ने मुझे बोला है कि जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक आगे समझाने से कोई फायदा नहीं। तो बाप की सामान्य नॉलेज सामान्य ज्ञान तो ये है कि वो जिसको समझाया जाए वो शंकर के पाठ को स्वीकार करे, ये पहली स्टेज। अगर वो शंकर के पाठ को ही स्वीकार नहीं करता है तो आगे उसे समझाने से कोई मतलब नहीं। अगर शंकर के पाठ को मान लेता है तो जो विशेष ज्ञान है विशेष पहचान है बाप की पहचान के पॉइंट वो बताने, तब तक नहीं बताने। तो विशेष बाप की विशेष पहचान के पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनसे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसे भी महावाची मुरलियों में और अव्यक्तवाणियों में आए हुए हैं जो उस व्यक्ति पर ही लागू होंगे और किसी दूसरे पर लागू नहीं। क्या और किसी दूसरे पर लागू हो ही नहीं सकते? जैसे जन्म के बारे में ब्राह्मणों का दो प्रकार का जन्म है, एक तो लौकिक जन्म और दूसरा अलौकिक जन्म। तो लौकिक जन्म जो है
उसके बारे में बाबा ने इशारा दिया, उस व्यक्तित्व के बारे में
बाबा ने बोला हुआ है। परमावाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। अरे दुनिया में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके इतने जिलों में सिर्फ फरुखाबाद का ही नाम क्यों लिया? फरुखाबाद के लोग मालिक को मानने वाले हो गए और दुनिया में कोई भगवान को नहीं मानता क्या? लेकिन यहाँ भगवान को मानने की बात नहीं कही, मालिक को मानने की बात थी। तो बताया कि विश्व का मालिक जरूर कोई साकार ही होगा, निराकार तो विश्व का मालिक हो न सके। तो इसका मतलब सुप्रीम सोल की बात नहीं है, जरूर कोई साकार व्यक्तित्व है जो विश्व का मालिक बनता है और वो फर्कवाद का रहने वाला जरूर हो, ये साबित होगा। घर का फिर मुझे बोला घर का मालिक तो बाप ही होगा, बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, जब बच्चे बड़े होते हैं बच्चे पैदा करते हैं तब उनको बाप कहा जाता है। तो अब यहाँ कोई लौकिक पैदाइश की तो बात है नहीं, यहाँ तो अलौकिक वारिसदार बच्चे पैदा करने की बात है जो 108 रुद्रमाला की या विजयमाला के विशेष रत्न है, उन वारिसदार बच्चों को निकालने की बात है। तो जब उन बच्चों को निकालने वाला व्यक्तित्व संगठित रूप में साबित हो जाता है तो वही व्यक्तित्व विश्व का मालिक साबित हो जाते। तो मुरली ने स्पष्ट कर दिया, कोई एक वाक्य में नहीं, मुरलियों में कई जगह ऐसे महावाक्य आए हुए जो फर्कवाद के मालिक के प्रति बोले गए। तो उससे ये क्लियर हुआ कि विश्व का मालिक बनने वाला जरूर कोई फर्कवाद का व्यक्तित्व होना चाहिए। अच्छा अब फरुखाबाद में भी देर ब्रह्मा कुमार, यहाँ तो एक संगठन ऐसा भी है एडवांस पार्टी का गिना जाता है जो दो बस में भर के मन दारू ले गया था दो तीन साल पहले पन्नौ साइड में, वो भी अपनी वाणी चलाते हैं, वो तो छुट्टक मुट्टा वाणी चलाते हैं, मुरली पढ़ते भी नहीं, तो बड़ा घपला हो गया। फरुखाबाद में कहाँ ढूंढे विश्व के मालिक को, चलो फरुखाबाद है लेकिन फरुखाबाद में भी तो ढूंढना बड़ा मुश्किल, तो दूसरी पहचान भी बताई अलौकिक जन्म बाबा ने बोला हुआ है सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर की स्थापना कौन करता है? राजा विक्रमादित्य। तो शूटिंग पीरियड में भी तो कोई सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करने वाला होगा ना, वो कौन हुआ? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल ने अपने जीवन काल में मधुबन की धनराशि लगाकर सिर्फ एक ही सेवा केंद्र खोला था, कौन सा? अहमदाबाद का पालड़ी सेवा केंद्र। तो वो अहमदाबाद का पालड़ी सेवा केंद्र जो बाबा ने अढ़क धन संपत्ति बैंक बैलेंस बना करके खोला था, तो सोमनाथ मंदिर साबित हो जाता है सागर के कंठे पर, ज्ञान सागर मधुबन और उसका कंठा किनारा, किनारे का सेवा केंद्र वही था। अभी तो छोटे छोटे सेवा केंद्र और भी पास में खुल गई, लेकिन उस समय जो सबसे नजदीक का सेवा केंद्र था वो अहमदाबाद। तो सोमनाथ मंदिर तो साबित होगी, लेकिन मुरली ने बताया हुआ है सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर बनाने वाले को जरूर कुछ प्राप्ति हुई होगी सोमनाथ से, नहीं तो मंदिर क्यों बनाते हैं? यादगार मंदिर क्यों बनाते हैं? जरूर कोई प्राप्ति हुई होगी। तो प्राप्ति की बात तो अभी बताई कि यज्ञ के आज ने ब्रह्मा की सोल को माना राजा विक्रमादित्य की सोल को उस व्यक्ति से कोई विशेष प्राप्ति हुई थी। अलग को मिला अल्लाह, दे को मिली बादशाही, सारे यज्ञ की सारी बादशाही किसको मिली? ब्रह्मा को मिली। उसको तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह मिल गया, तो बिंदु को बच्चे याद करते रहो, प्राप्ति किसको हुई? ब्रह्मा को। तो जिसको प्राप्ति हुई जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा को स्मृति आई, बाबा की आंखें खुली कि यज्ञ के आदि में जो बच्चे थे वो ही श्रेष्ठ बच्चे, ये तो सब सबसे बिच्छू टिंडन घुस के बैठ गए। तो बाबा उन बच्चों को विशेष याद करने लगे 65 के बाद। मुरलियों मुरलियों बोला बाप को नहीं बच्चों को ही याद करेंगे, सबको याद नहीं करते। तो वही बच्चों की यादगार में बाबा ने बाबा को अनुभूति हुई। कराची से भी जब आए थे तो विश्व किशोर भाव को सबसे पहले अहमदाबाद में भेजा था, तो जाओ देख के आओ वहां कोई बंगला मिले तो वहां अड्डा जमाए, लेकिन गुजरात का तो लास्ट तो फास्ट जाने का पार्ट था, सब जोन्स में सेवा केंद्र खुल गए लेकिन गुजरात में कोई सेवा केंद्र 65-66 तक नहीं खोला जा सका, कोई गुजरात में सर्विस नहीं हुई। लास्ट में जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो 66 में पहला सेवा केंद्र गुजरात का पालड़ी सेवा केंद्र खुला, सोमनाथ मंदिर। तो उसके लिए मुरली ने बोला हुआ सोमनाथ के साथ जरूर सोमनाथ ने भी होगी, क्या सोमनाथ मंदिर होगा तो सोमनाथ ने भी जरूर होगी। तो इसका मतलब बाबा ने इशारा दे दिया कि वहां से सोमनाथ और सोमनाथिनी सोमरस देने वाली दोनों ही मूर्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए जो संसार को सोमरस यानी ज्ञान का रस देती। बाबा की अनुभूति हो चुकी है, देखो कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसमें बाद में मूर्तियां भी स्थापित की जाती, ये कहां की यादगार, ये भी संगम की यादगार। तो बाबा ने उन मूर्तियों को वहां स्थापन भी किया कराया। सोमनाथ के साथ जो सोमनाथिनी है वो अलौकिक जन्म लेने वाले कोई ब्राह्मण बच्चे हैं जो पालन सेवा केंद्र के जन्म लेते हैं, वो उनका अलौकिक जन्म, ये दूसरी पहचान है राम वाली आत्मा की यानी शंकर की, पाठ बजाने वाले सोमनाथ की। सोमनाथ नाम है ना, तो सोमनाथ नाम है तो जरूर कोई शरीरधारी भी होगा। मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं, मेरे तो बिंदु का नाम शिव है, सोमनाथ की तो कितना श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार साकार का होता है चित्रकार का, जरूर साकार चित्र का साकार शरीरधारी का श्रृंगार हुआ होता है। तो वो साकार शरीरधारी व्यक्तित्व अर्थात वो मूर्तियां पारण सेवा केंद्र सोमनाथ मंदिर से निकलती है, बाद में भले वो सोमनाथ मंदिर टूट जाए क्योंकि जो हिस्ट्री में हुआ तो शूटिंग तो होगी, लेकिन वो मूर्तियां जो तैयार हो गई वो तो अपना काम करेंगी। तो ये दूसरी पहचान सशक्त पहचान है कि उनका अलौकिक जन्म वर्ण से होना चाहिए। अब ये भी मुसीबत बाहर जाने कितने स्टूडेंट छाछ से वो सेवा केंद्र खोला है और वहां से जाने कितने बारिशदार ज्ञान लेने करके निकले, कैसे पहचाना जाए कौन है क्या है। तो फिर बाबा ने आय की भी बात बताई, एक क्या यानी मुरली में पूरा गुलिया बता दिया, क्या कोई जानवर खरीदते हैं तो कागज में क्या चीज लिखी जाती है, पूरा हुलिया लिखा जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने मुरलियों में उस पार्ट के सारा हुलिया लिख दिया है, सिर्फ उसको समझने की दरकार है। एक भी बता दू मुरली बोला हुआ बाप तो अनन्य बच्चों को ही याद करेंगे, सबको याद नहीं करेंगे। अनन्य का मतलब अन्य यानी अन्य माने दूसरे, उन जैसे जो दूसरे न हो, उन बच्चों के जैसे दूसरे बच्चे न हो, ऐसे पारधारी बच्चों को याद करते हैं। तो यज्ञ के आदि में वो बच्चे जो थे जिनके लिए बोला हुआ है, मुरली चलाती थी, टीचर बनकर के बैठती थी, वो अकेली राम वाली आत्मा ही नहीं थी, कोई माता भी थी, तो दो मूर्तियां हुई ना, तो उनके एज के बारे में भी बताया हुआ बोला हुआ है, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। उन बच्चों को संदेशियों में बुलाते थे, उनको कितना समझाते थे, फिर भी तुमने नहीं माना, अब तुम पदभ्रष्ट हो गए, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए। तो जब ये वाक्य मुरली में बोल दिया तो जिस संघ में ये वाक्य बोला गया उस संघ में से 20 20 और 25 ईयर्स माइनस कर दिया। तो स्पष्ट है कि उन बच्चों की याद तो बाबा ने मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही की, तो या तो 66 में ये वाक्य बोला गया या 67 में बोला गया, तो 67 में से 20 ईयर्स माइनस करिए और 25 ईयर्स माइनस करिए, कौन सा ईयर आता है, 1.47 1.42 यानी वो आत्माएं यज्ञ में 42 और 47 के बीच उनको शरीर छोड़ना चाहिए, यज्ञ से वो आत्माएं चली गई थी। तो जब चली गई शरीर छोड़ करके, तो बाबा कहते हैं आत्मा यहाँ शरीर छोड़ती है वहां जन्म ले लेती, तो 82 में उसका बर्थडे होना चाहिए और सीता वाली आत्मा का या पार्वती वाली आत्मा का 47-48 के आसपास होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि 42 में जिस आत्मा का जन्म होगा, जिस ब्राह्मण का, अब चल रहा है 91, तो कितने साल का हुआ है 49 ईयर, कितनी एज होनी चाहिए लौकिक उम्र लौकिक आयु, ये क्लियर हुआ। अब इस उम्र के तो पता नहीं जाने कितने लोग होंगे, तो ब्राह्मणों की दुनिया में इस उम्र के लोग अगर इकट्ठे किए जाए तो ढेर सारे निकलेगी, हाँ तो फिर ये तो फिर घपला हो गया। तो अलौकिक आय भी बताई क्या, अलौकिक आय, अलौकिक आय का मतलब इस जन्म में वो आत्मा कितने साल की हुई, तो बताया है ब्रह्मा की आय 100 साल, ब्रह्मा की आयु 100 साल, उनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, तो वो तो स्कूल आई हो गई 76 वो 37 में 48 में वो तो स्थूल आय की बात हुई, लेकिन ब्राह्मण की दुनिया में हर बात अलौकिक है। यहाँ इतनी लंबी आय नहीं हो सकती शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में तो 5000 वर्ष का ड्रामा कितने में रिपीट होता है, 50 साल 100 साल के अंदर ही रिपीट हो जाता है। तो 69 से लेकर और 77 तक संपूर्णता वर्ष मनाया गया था। उतना समय का जो पीरियड है वो ब्रह्मा की आय संपूर्ण होने का पीरियड। तो कितने साल हुए, 6-7 साल हुए ना, 69-70 से लेकर के 76 तक 5-6 साल हुए, 6-7 साल हुए। तो बच्चा जो गर्भ में आता है वो भी 5वें-6वें महीने गर्भ में प्रवेश करता है, तब तक वो माँ का पिंड रहता है, उसमें हलन चलन नहीं होती। बाबा ने मुरली में बोला है कि जब आत्मा प्रवेश करती है तो चुनपुर होती है गर्भ में। माँ को उसका अनुभव हो सकता है, दूसरों को क्या अनुभव होगा। तो जो यज्ञ माताएं यज्ञ के अंदर है यज्ञ, तो 76 में उन यज्ञ माताओं को उस चुनपुर का अनुभव हुआ होगा और दूसरों को यह अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव हुआ चुनपुर माने हरकत करना। तो 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन सा वर्ष मनाया गया, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या 76 से पहले कभी बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी या 76 के बाद कभी बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई। 76 को ही प्रत्यक्ष का वर्ष क्यों घोषित किया गया, तो जरूर वो बाप का पाठ बजाने वाली आत्मा 5-6 साल पूरे करने के बाद गर्भ में प्रवेश कर गई। यज्ञ माताओं के बुद्धियों की गर्भ में प्रवेश कर जाते बाप, वो बाप प्रत्यक्ष हुआ विश्व का बाप। वो है असली शिव जयंती का पीरियड। विदेशी लोग रात्रि के 12 बजे शिव जयंती मनाते हैं और स्वदेशी लोग जो है राम का जन्म जो मनाया जाता है वो साकार रूप में परमात्मा की अप्रत्यक्षता मानी जाती है। भारतवर्ष में शिव की जयंती नहीं मनाते हैं, उसको कहते हैं शिवरात्रि। जयंती कहते हैं कृष्ण की अथवा राम की। तो राम बाप का जो जन्म है दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि रात्रि के 12 बजे था भोर अंधेरा 76 में, जबकि ब्राह्मणों की दुनिया में घोषणा हुई थी 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो इतना ब्राह्मणों की बुद्धि में घोर अंधेरा समाया हुआ था कि उन्होंने ये नहीं पहचान पाया कि ये कौन से विनाश की बात की है। बाबा ने उन्होंने हद का विनाश समझ लिया। ये तो बेहद के ब्राह्मणों की संगमी में दुनिया के विनाश की बात थी। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में विघटन शुरू हो जाएगा। तो हो गया, दो पार्टियां हो गई माने विघटन हो गया। जो आशाएं थी एक धर्म एक राज्य एक भाषा स्थापन करेंगे, वहां तो दो भाषाएं हो गई, दो राज्य हो गए, दो धर्म हो गए, तो सत्यु कैसे स्थापन होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 76 के वो आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती और फिर प्रत्यक्ष कब होती है, संपूर्णता वर्ष 77 से लेकर 80 तक। बाप का कार्य कहाँ चलना चाहिए, बाप का काम है आखिरी काम है राजधानी स्थापन करने का। तो राजधानी का फाउंडेशन कहाँ पड़ेगा, तो दिल्ली में राजधानी का फाउंडेशन 76 से लेकर के 80 तक उस आत्मा के द्वारा डाल दिया। वो बाप जो विश्व का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होना है वो वहीं से प्रत्यक्ष होने लगा। लेकिन ये बाप की प्रत्यक्षता है, बाप कभी अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता। क्या ये कैसे हो सकता है कि फादर सोच सन न करे, सन सोच फादर, फादर सोच सन।
तो बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा? बाप ज्यादा पावरफुल या बच्चा ज्यादा पावरफुल? बाप ज्यादा पावरफुल तो बच्चे को पहले प्रत्यक्ष करेगा। तो वो 76-77 में जो प्रत्यक्षता होती है वो ना के बराबर होती, वो प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता नहीं होती। जब तक कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष न होगा